अभी कल ही एक दिन पहले अक्षय तृतीया इस तिथि को आप सभी ने मनाया होगा या पूरे भारत में इसको मनाया गया। अक्षय तृतीया को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, तो इसलिए आज इस तिथि के विषय में चर्चा करेंगे कि ये अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए इस दिवस पर, शास्त्रों में पुराणों में इसका क्या वर्णन है, क्या क्या हुआ था इस दिन पर। इस दिन पर बहुत सी प्रसंग हुए हैं, बहुत सी घटनाएं हुई हैं, सबका विस्तार से वर्णन करना तो संभव नहीं है, फिर भी संक्षेप में कुछ लीलाओं का वर्णन करके इस दिवस के वर्णन को करेंगे। पूरे वर्ष में चार ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। वर्ष में चार ऐसी तिथियां हैं जिस दिन मुहूर्त देखना नहीं चाहिए या आवश्यकता नहीं होती मुहूर्त देखने की। उसका कारण ये होता है कि उन दिनों में, उन चार दिनों में सूर्य और चंद्रमा आर्यव्रत अर्थात हम लोग जिस स्थान में हैं उसकी कुंडली में ऊंचे स्थान पर रहते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हर व्यक्ति की कुंडली बनाई जाती है, उसके नक्षत्र इत्यादि कहां पर हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, इसी प्रकार स्थान की भी कुंडली होती है। इसीलिए तो उसको देखकर कहा जाता है कि इस स्थान में अब आने वाले समय में कोई कष्ट आने वाला है इत्यादि। तो उस स्थान की कुंडली में अर्थात ये जिस स्थान आर्यव्रत भारतवर्ष हम जिसमें हैं, वैसे बहुत बड़ा है केवल भारत नहीं, तो उसमें इन चार दिवसों में सूर्य और चंद्रमा ये ऊंची स्थिति में रहते हैं, उच्च अवस्था में, उच्च स्थिति में। ये शुभ माना जाता है जब सूर्य और चंद्रमा किसी भी कुंडली में उच्च स्थान में रहे तो वो बहुत शुभ होता है। तो ये चार दिवस हैं। सबसे पहला दिवस होता है चैत्र मास, चैत्र महीने का पहला दिवस, जिसे नववर्ष भी कहा जाता है। कहीं जगह पर गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है, कहीं उगादी के रूप में मनाते हैं। वैसे वो शब्द उगादि या युग आदि है, युग का आदि, युगादि। तो वो पहला दिवस है जब मुहूर्त नहीं देखा जाता, ये बहुत शुभ माना जाता है वर्ष में। दूसरा दिवस विजयदशमी का दिवस, विजयदशमी के दिन भी कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता, ये पूरा दिन शुभ माना गया है। तीसरा दिवस है कार्तिक महीने का पहला दिवस, जिस दिन कार्तिक महीना प्रारंभ होता है ये भी बहुत शुभ माना गया है, इस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। और चौथा दिवस है अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया, तीसरे दिवस में ये अक्षय तृतीया कहा गया है। क्षय शब्द का अर्थ होता है नाश और अक्षय का होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन जो कार्य किए जाते हैं उनका नाश नहीं होता, ऐसा माना जाता है। इस दिवस पर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए। कुछ लोग कहते हैं कि सतयुग इसी दिन प्रारंभ होता है। सतयुग तो बहुत बड़ा युग है लेकिन वो इसी दिन प्रारंभ होता है। कुछ कहते हैं त्रेता युग प्रारंभ होता है, तो युग आदि इसीलिए इसको कहा जाता है। युग का आदि भी है ये, एक उगादि हम गुड़ी पाड़वा के दिन मनाते हैं, एक ये भी युग का प्रारंभ है। तो ये एक दिवस है जिस दिन युग का प्रारंभ होता है। तो अक्षय तृतीया के अब हम उन चीजों का वर्णन कर रहे हैं जिस अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ, तो आप लोग गिनते जाइए, बहुत सारी चीजें हैं इस दिन में। तो अक्षय तृतीया के दिन ये पहला चीज हम जान सकते हैं। दूसरी चीज, अक्षय तृतीया के दिन अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई थी। अन्नपूर्णा देवी अर्थात जो अन्न को प्रदान करती हैं, जिनके कई नाम हैं, विश्व शक्ति, भुवनेश्वरी, विश्वलाक्षी, तो ये अन्नपूर्णा देवी हैं। ये भी इसी दिन इनका प्राकट्य हुआ था, या कहना चाहिए कि इसी दिन उन्होंने शिवजी को भोजन कराया था। ये एक लीला कही गई है कि कैसे पार्वती देवी एक समय नाराज होकर शिवजी से वो चली गई और उन्होंने अपनी शक्ति को हटा दिया, जीव परेशान होने लगे, खाने नहीं मिला, तो फिर उन्होंने प्रकट होकर स्वयं भोजन बनाकर सबको खिलाया। शिवजी ने भी स्वयं उनसे भिक्षाटन किया, भिक्षा दी, और उस समय पर अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हुआ। तो ये भी आज के दिवस पर हुआ था। वैसे आज के दिवस पर परशुराम जी का आविर्भाव भी हुआ था। ये तो क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये परशुराम क्षेत्र है, तो परशुराम जी का आविर्भाव आज ही के दिन हुआ था। परशुराम जी की कथा आप सब जानते हैं इसलिए विस्तार में नहीं कहेंगे। उनके पिता जमदाग्नि और उनके पिता थे ऋचिक मुनि। ऋचिक मुनि ने विवाह किया सत्यवती से। वे चाहते थे कि एक ब्राह्मण उत्पन्न हो, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक पायसम दिया कि इसको ग्रहण करो तो एक अच्छा ब्राह्मण उत्पन्न होगा। और एक पायसम उन्होंने अपनी पत्नी की माता जो क्षत्रिय थी, एक राजा की पत्नी थी, तो उनको दिया कि आप इसको स्वीकार करो, आपको एक अच्छा क्षत्रिय पैदा होगा। तो जो ऋचिक मुनि की पत्नी की माता थी, राजा की पत्नी, उन्होंने सोचा कि इसने अपनी पत्नी को अच्छा दिया होगा, मुझे ठीक से नहीं दिया होगा। ये होता है ना, हमेशा सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को जो चीज मिलती है वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की चीज में आनंद लेने का प्रयास करता है कि उसको ज्यादा अच्छा मिला है, है ना। तो उनकी माता ने क्या किया, उनकी माता ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम मेरा ले लो पायसम और मैं तुम्हारा ले ले। ठीक है, दोनों, पुत्री ने कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो जब ऋचिक मुनि को पता चला तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी संतान होगी, हालांकि ब्राह्मण का पुत्र होगा लेकिन वो तो भयंकर क्षत्रिय होगा, और उनके यहां हालांकि वो क्षत्रिय का पुत्र है लेकिन वो बहुत बड़ा ब्राह्मण होगा। तो ऋचिक मुनि की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्षमा याचना की, गलती हो गई, अब कुछ कीजिए, उन्हें मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं हो सकता, तो अच्छा इतना तो कर दीजिए कि मेरा पुत्र नहीं, मेरे पुत्र का पुत्र जो हो वो क्षत्रिय हो लेकिन मेरा पुत्र नहीं। तो ऋचिक मुनि ने ठीक है इतना कर सकता। तो फिर उनके पुत्र हुए जमदाग्नि ऋषि, और जमदाग्नि के पुत्र हुए रेणुकासुत श्री परशुराम जी। और परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षत्रियों का कार्य किया, उनके अंदर क्षत्रियों का भाव था। इसीलिए जब एक राजा कार्तवीर अर्जुन जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में आए, एक समय जमदाग्नि ऋषि ने बड़ा अच्छा उनका स्वागत किया, बहुत खिलाया पिलाया, तो वहां गाय दिखाई दी। जमदाग्नि ऋषि ने कहा सब कुछ इससे आता है। राजा ने कहा ये तो हमारे पास होनी चाहिए, आपके पास कैसे है ये गाय, तो जबरदस्ती उसको खींच कर ले गए। दरअसल यहां हम लोग एक सिद्धांत देखते हैं कि उस राजा ने कार्तवीर ने सोचा कि जो भी अच्छी चीज है वो राजा के लिए होनी चाहिए, सारी संपत्ति राजा की, लेकिन वो एक सिद्धांत भूल गया। सारी संपत्ति राजा की होती है, लेकिन ब्राह्मणों की संपत्ति पर राजा को कोई अधिकार नहीं होता है। ये शास्त्र का नियम है। भगवान की संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति पर राजा को कोई अधिकार नहीं होता। जब जब राजाओं ने ब्राह्मणों की या भगवान की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया, उनके ऊपर उनका उसका फल भुगतना पड़ा। और ये हम कोई शास्त्रों की काल्पनिक घटनाओं को नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र से कह रहे या कल्पना कर रहे हैं, ये सत्य घटनाएं हैं। अभी कुछ समय पहले आप सब जानते हैं, आंध्र प्रदेश में वहां के एक राजा, आंध्र प्रदेश के राजा या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया भगवान की संपत्ति को हड़पने का। 7 दिन के अंदर मृत्यु हो गई उसकी। जिस दिन वो कहकर गए थे कि ये मैं अब इसको करूंगा या हड़पने का उन्होंने योजना, 7 दिन के अंदर मृत्यु। 2 लोगों ने प्रयास किया था बालाजी की संपत्ति को हड़पने का, दोनों मारे गए। एक तो इतना मूर्ख मुख्यमंत्री था कि उसने, जब वो वहां गया तो उसने पालकी देखी, तो वहां के लोगों को कहने लगा, उनके वहां जो सेवक हैं भगवान के, कि पालकी में मैं बैठूंगा। तो उन्होंने कहा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, ये भगवान की पालकी है, भगवान बैठते हैं। बोले, मैं ही भगवान हूं, मुझे बिठाओ इसमें। तो जब जबरदस्ती करने लगे, सब लोगों ने समझाया, आप जानते नहीं हो आप क्या बोल रहे, इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा यहां, चलिए यहां से। तो फिर उनको ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आऊंगा और मैं बैठूंगा पालकी पर। उनको बड़ा अहंकार था अपने ऊपर, वापस आ ही नहीं पाए कभी। बालाजी की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं। या फिर जो दूसरे अन्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री, वो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने कई कानून बनाए और उन कानूनों को अब वो लागू करने जा रहे थे। भगवान ने उनका हेलीकॉप्टर ऐसा गायब किया कि पता ही नहीं, शरीर भी नहीं मिला उनका, कहां गए। इसीलिए राजा को बड़ा सावधान होना चाहिए, भगवान की संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति पर उसको कोई अधिकार नहीं है। बाकी संपत्ति उसके अधिकार में है, लेकिन भगवान की नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहते हैं। हम लोग जब बेलगाम में थे तो हमारे मंदिर से एक गीजर चोरी हो गया था। गीजर होता पानी गर्म करने का, और हम लोग सब सोच रहे थे आश्रम से भगवान की संपत्ति कौन ले जा सकता है, भगवान की संपत्ति को तो छूना नहीं चाहिए, कैसे ये हो गया। और हम लोग सब सोच रहे थे कि जिसने भी ये किया है उसका अच्छा नहीं होगा, भगवान की संपत्ति ले गया। 8 दिन के अंदर वो वापस वहीं पाया गया फिर से वहीं लगा हुआ था। हम लोग एक दिन सुबह उठे तो देखा, सब देखा, अरे गीजर तो यहीं है, कहां से आ गया, पता नहीं कहां से आया। जो भी ले गया होगा उसको इतनी तकलीफ हुई होगी कि बेचारे ने लाकर वैसे ही वहीं पर लगा दिया, जहां से वो कहीं नीचे भी नहीं रख कर गया, जहां से हटाया था वहीं लगा कर गया ठीक से। तो इसीलिए जानना चाहिए कि भगवान की संपत्ति को हड़पने का प्रयास नहीं करना। जब जब इतिहास में भगवान की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया, ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया गया, भगवान ने सहन नहीं किया, उनके ऊपर निश्चित कष्ट आए, दुख आए। बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने भगवान की संपत्ति को लेने का प्रयास किया नाश हो गए, उनका आज नामो निशान नहीं। इसीलिए बहुत संभालना चाहिए। तो कार्तिक वीर अर्जुन जबरदस्ती उस गाय को ले गए, और जब परशुराम जी वापस आए, परशुराम जी उस समय नहीं थे वहां, और उन्हें पता चला कि हमारी गाय ले गए हैं जबरदस्ती, तो उन्होंने कहा कि अभी जाऊं, और चले गए पीछे पीछे। और इतने क्रोध में, देखिए ये क्षत्रिय का भाव, जमदाग्नि ब्राह्मण है, गाय ले जा रहे हैं कार्तिक वीर अर्जुन, उन्होंने कहा ठीक है क्या कर सकते हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन परशुराम जी क्षत्रिय हैं, कैसे ले गए, गए और उन्होंने कार्तिकवीर अर्जुन को मार दिया। कार्तिकवीर अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये वो व्यक्ति है जिसने रावण को बंदी बना लिया था, इतना शक्तिशाली था, अपने हाथ से नर्मदा नदी का बहाव रोक दिया था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन परशुराम जी ने उसको मार दिया, गाय वापस लेकर आए। जमदग्नि ऋषि ने समझाया, ये क्या किया तुमने, अरे एक गाय ले गए थे, ले जाने देते, उसके लिए तुमने राजा का वध कर दिया, राजा की तो सारी संपत्ति है, राजा को नहीं मारना चाहिए था, जाओ तुम तपस्या करो, तुम सब तीर्थों में जाओ। जमदग्नि ऋषि ने अच्छा नहीं लगा, परशुराम जी ने ये ब्राह्मण का कार्य नहीं किया, जाओ तीर्थ यात्रा करो, अपने आप को शुद्ध करो। वैसे परशुराम जी तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, उनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जमदग्नि ऋषि ने कहा जाओ शुद्धिकरण के लिए। एक वर्ष तक घूम रहे थे परशुराम जी, और फिर जब वापस आने वाले थे, एक वर्ष समाप्त होने वाला था, उसके पहले कार्तिवीर अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि ये परशुराम, इसने हमारे पिता को मारा, अब इसके पिता अकेले बैठे हैं, अब हम जाकर मारेंगे। तो वो लोग चले गए और जमदग्नि ऋषि ध्यान में थे, भगवान श्री विष्णु पर ध्यान कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने तलवार से उनकी गर्दन काट दी, उनकी मृत्यु हो गई। परशुराम जी आए और जैसे उन्होंने देखा इसको तो बड़ा क्रोध आया, तो फिर उन्होंने जाकर उनके जितने भी कार्तिकीय अर्जुन के हजारों पुत्र थे उन सबको मार दिया, बहुत उपद्रव किया, और उसके बाद से उनको क्षत्रियों से क्रोध हो गया कि ये क्षत्रिय अपने आप को बड़ा अहंकारी मानते हैं, छोड़ूंगा नहीं, पृथ्वी पर से क्षत्रियों को समाप्त कर दूंगा। तो ऐसे कहते हैं कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। तो ऐसे परशुराम जी का आविर्भाव आज के दिन हुआ था। वैसे परशुराम जी ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ये जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं भी, गोवा है, मैंगलोर तक, केरला तक, ये सारा परशुराम क्षेत्र कहलाता है। वैसे परशुराम जी ने केवल इस क्षेत्र में नहीं, दुनिया भर में भगवान के मंदिर स्थापित किए थे, ये परशुराम जी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। दुनिया भर में जहां भी गए वो, उन्होंने भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर स्थापित किए। भगवान विष्णु के इसलिए क्योंकि वो भगवान है, और शिव जी के इसलिए क्योंकि शिव जी उनके गुरु हैं, शिवजी से उन्हें सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए शिवजी के मंदिर उन्होंने स्थापित किए और भगवान विष्णु के। सब जगह, सारी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, केवल परशुराम क्षेत्र में नहीं। श्रील प्रभुपाद जब मंदिरों की स्थापना कर रहे थे, मंदिरों को बना रहे थे, तो एक समय प्रभुपाद कहते हैं कि मैं केवल मंदिरों का पुनर्स्थापन कर रहा, मैं मंदिर बना नहीं रहा, मैं स्थापित नहीं कर रहा, मैं केवल पुनर्स्थापन कर रहा हूं। पुनर्स्थापन मतलब पहले से किसी ने बनाए हुए हैं, मैं उनको फिर से पुनः उनका उद्धार कर रहा हूं, जैसे कहते हैं जीर्णोद्धार होता है मंदिर का। प्रभुपाद ने कहा तो किसने स्थापित किए थे, परशुराम जी। तो जो मंदिर परशुराम जी ने दुनिया भर में स्थापित किए थे, जो लुप्त तो हो चुके थे, प्रभुपाद ने उन्हीं स्थानों पर जाकर फिर से उन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया। कई लोग कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि पहले मंदिर थे, परशुराम जी ने स्थापित किए थे। भारत में तो फिर भी कुछ दिख जाता है, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, कहां है प्रमाण है। आज भी आप अगर उत्तरी अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चेस हैं। दरअसल जब यूरोपियंस वहां पर आए थे कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में, तो उस समय ये बड़ी बड़ी इमारतें थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, और इन बिल्डिंगों में उन्होंने अपने चर्च स्थापित किए। वे जानते नहीं थे कि बिल्डिंग क्या है। अगर आप आज भी इन चर्चों को देखेंगे तो ज्यादातर चर्च के ऊपर क्रॉस होता है, आप जानते हैं चर्च बनाते हैं वो लोग ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस है उसके ऊपर, लेकिन क्रॉस चक्र के ऊपर लगा हुआ है कई चर्चों में। आ जाइए आप उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, चक्र है, चक्र के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो क्रॉस है ये कई बार बदल चुका है, और वातावरण के अनुसार खराब हो जाता है, लोहे का होता है, जंग लग जाता है, टूट जाता है, कई बार बदल चुके हैं उसको, लेकिन आज तक चक्र को नहीं बदला उन्होंने। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये चक्र बना किस लोहे से है, खराब ही नहीं होता। आज तक वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए। उन्हीं की चर्च में, जिसको वो लोग चर्च कह रहे हैं, दरअसल वो मंदिर है भगवान के, उन्हीं की चर्च में वहीं पर चक्र लगा हुआ है। उनको ही नहीं पता ये किस लोहे का बना है कि खराब नहीं होता। अपना क्रॉस उनको कई बार बदलना पड़ता, चक्र आज तक नहीं बदला। ये परशुराम जी के द्वारा स्थापित मंदिर है। तो परशुराम जी ने कई मंदिरों की स्थापना की। प्रसिद्ध लीला आप जानते हैं उनकी, कि कैसे उन्होंने अपनी ही माता की हत्या कर दी अपने पिता के कहने पर, और फिर पिता ने वरदान दिया और उनको पुनर्जीवित किया। इस लीला को हम कई बार कह चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस तरह परशुराम जी ने भगवान की भक्ति को बहुत फैलाया। और जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि उनके गुरु का धनुष था। क्रोध में आए वो, वहां वर्णन है कि जब परशुराम जी आए, रामचंद्र जी सामने थे, परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अभी इसको मैं मार देता हूं। उन्होंने सारंग को बुलाया। सारंग भगवान विष्णु का धनुष है। वैसे वर्णन है कि एक स्थान पर है कि दो धनुष बने थे, एक शिव जी के लिए, एक विष्णु के लिए, और विष्णु का इनके पास था, वो भी सत्य है। लेकिन वो सारंग को बुला रहे हैं और सारंग आ नहीं रहे हैं, और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा सारंग भगवान रामचंद्र के हाथ में है। और तब वो जान गए कि ये तो मेरे आराध्य देव भगवान विष्णु है। और उस समय श्री रामचंद्र जी ने इनकी सारी शक्ति को ले लिया। तो जमदाग्नि ऋषि इस समय में सप्त ऋषियों में से एक है, और अगली बार सप्त ऋषियों में परशुराम जी एक सप्त ऋषियों में से एक होंगे, जो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो इसे परशुराम जी का भी आविर्भाव आज के दिवस पर हुआ था। आज के दिवस पर, आज अर्थात अक्षय तृतीया के दिवस पर, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अभी तक हम कितनी चीजें बोल चुके हैं, किसी को याद है अक्षय तृतीया पर क्या क्या हुआ? सब भूल गए। युग प्रारंभ हुआ, और अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य, अब वही अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य, और हाँ परशुराम जी का आविर्भाव, और कुछ कहा? हाँ, गंगा जी का अवतार, इतना ही कहा है ना अभी तक। अन्नपूर्णा देवी और परशुराम जी और गंगा देवी। तो गंगा देवी का भी अवतरण हुआ आज ही के समय अक्षय तृतीया के दिवस पर। आप सब जानते हैं कि सगर महाराज के पुत्रों ने किस तरह पृथ्वी को खोद दिया था, और फिर उनके उद्धार के लिए भगीरथ महाराज, उनके वंशज ने आगे बहुत तपस्या की, कड़ी तपस्या। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा, जो केवल ऊंचे लोकों में बहती थी, उन्होंने स्वीकार किया कि वो पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा मैं जब आऊंगी तो बड़ी तेजी से गिरूंगी, मेरे को संभालने के लिए कोई चाहिए। तो फिर शिवजी से प्रार्थना की गई, शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर धीरे से छोड़ा। तो ऐसे गंगा भी, वैसे गंगा की कथा करने जाए तो बहुत लंबी है, और आज हम और भी चीजों को कहना चाहते हैं क्या क्या हुआ आज के दिवस पर। तो वैसे गंगा जो सबको पावन करती हैं, वो भी आज के ही दिवस पर प्रकट हुई हैं, गंगा देवी। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में आज के दिवस पर एक महत्वपूर्ण लीला हुई। वो लीला इस प्रकार है कि एक समय श्री कृष्ण ने देखा कि उनके पिताजी बड़े व्यस्त हैं, नंद महाराज कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, और माताजी उनकी यशोदा मैया भी बड़ी व्यस्त हैं, कुछ खाने पीने के लिए बना रही हैं। श्री कृष्ण ने जाकर पूछा यशोदा मैया से कि क्या बात है, कहाँ क्या हो रहा है। श्री कृष्ण हमेशा पूछते थे, जैसे हम लोग गोवर्धन लीला में भी सुनते हैं, नंद महाराज तैयारी कर रहे हैं यज्ञ की, बताया नहीं कृष्ण को, बड़ा बुरा लगा कृष्ण को, अरे मुझे नहीं बताया, तो पूछा जाकर, तो अभी भी बोले मुझे नहीं पता कहां जा रहे हैं। तो यशोदा मैया जरा व्यस्त थी, उन्होंने कहा ज्यादा बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। कृष्ण ने साड़ी का पल्लू पकड़कर, छोटे से थे, खींचने लगे, नहीं मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो प्रयाग जा रहे हैं, प्रयाग अर्थात जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो यशोदा ने कहा वो प्रयाग जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूं उनको रास्ते के लिए देने के लिए। तो नंद महाराज की इच्छा थी कि वो प्रयाग में जाके स्नान करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग में जो स्नान करता है वो तीर्थराज है, सारी नदियां वहां हैं, तो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो श्री कृष्ण गए नंद महाराज के पास और उनसे कहा कि आप प्रयाग जा रहे हैं। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा आप कल जाइए। तो नंद महाराज ने कहा क्यों? तो उसने कहा कल अच्छा दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, आप कल जाइएगा, आज नहीं जाइए। खैर नंद महाराज ने कहा ठीक है, आज नहीं जाएं कल चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। तो नंद महाराज रुक गए। अगले दिन सुबह उनके जो आप में से जो ब्रज गए हैं, तो जो नंदग्राम है, नंदग्राम में उनके महल के बस नीचे सामने एक बहुत सुंदर सरोवर है। तो नंद महाराज सुबह सुबह उठकर उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा विशाल पुरुष, वो बार बार सरोवर में स्नान कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है और फिर आकर मिट्टी में लेट रहा है, वहां की जो रज है उसमें लौट रहा है, फिर जाता है स्नान करता है, फिर आता है रज में लौटता है। नंद महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कौन है ये, आज तक देखा नहीं इसको हमने। तो नंद महाराज ने उनसे पूछा कि मैं इस ये जो स्थान है यहां का राजा हूं और मैं ज्यादातर सबको जानता हूं जो यहां रहते हैं, लेकिन आपको कभी देखा नहीं, आप कौन है? तो उसने कहा मैं प्रयाग तीर्थराज। तो आप प्रयाग हैं तो यहां कैसे? तो उन्होंने कहा कि दरअसल साल भर सभी लोग मुझ में आकर स्नान करते हैं और उसके कारण सारों के पाप मुझे लेने पड़ते हैं, इसीलिए वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन मैं यहां आकर इस सरोवर में स्नान करता हूं ताकि मेरे सारे पाप चले जाएं। इतने सारे लोगों का जो पाप लिया है वो कहां जाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहां के जब ब्रज की रज में लौटता हूं, इसमें स्नान करता हूं, तो फिर मेरे पाप चले जाते हैं। तो नंद महाराज ने देखा कि वहां नदियां भी थीं इत्यादि, तो ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ, इसीलिए उस सरोवर को उसी दिन नाम मिला पावन सरोवर। नहीं तो पहले वो नंद सरोवर कहलाता था, मगर फिर अक्षय तृतीया के दिन उसको ये नाम दिया गया कि पावन सरोवर, अर्थात जो पावन कर देता है। तो ये लीला भी आज ही के दिन पर हुई थी, पावन सरोवर की लीला, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस ये माना गया है। और कई लीलाएं हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है क्या क्या हुआ। कुबेर जो धन के देवता हैं, कुबेर को आज के दिन लोकपाल बनाया गया था, अर्थात वो धनार्य या खजांची आज के दिन बने थे, लोकपाल का पद उन्हें दिया गया था। कुबेर वैसे रावण के भाई हैं, आप सब जानते हैं। तो आज के दिन उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें लोकपाल का पद प्रदान किया था। तो ये भी लीला अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। साथ ही साथ व्यास देव ने महाभारत लिखना प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है अक्षय तृतीया। अभी तो और बहुत सारी, हम लोग तो केवल सोचते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद लेना, जीवन सफल हो गया, लेकिन ये नहीं है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ होता है, जैसे हमने बताया, जिसका क्षय नहीं होता। भगवान के धाम को अक्षय धाम कहते हैं क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन अक्षय धाम की क्रियाओं को करने से अक्षय लाभ होता है। इस जगत की चीजें तो वैसे ही समाप्त होने वाली हैं। लोग सोना खरीदते हैं ये सोच के कि ये अक्षय बना ही रहेगा, जीवन भर सोना हमारे पास रहेगा, कुछ ही दिनों में चोर चुरा कर चला जाता है। अक्षय कार्य करने चाहिए, अक्षय मतलब भक्ति के कार्य। दरअसल जब सोना लेते हैं लोग, इसके पीछे भी एक कारण है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी के कई रूप हैं और एक रूप है वर लक्ष्मी। वर लक्ष्मी मतलब जो वरदान देती हैं। और इस दिन नारायण लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री विष्णु से, लक्ष्मी देवी से ये वर मांगना चाहिए कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन सेवा प्रारंभ करनी चाहिए ताकि हम ये अक्षय बनी रहे, हमेशा सेवा होती रहे। जप करना प्रारंभ करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, ताकि जीवन भर नहीं सतत हम इस जप को कर सकें। भक्ति की अन्य क्रियाओं को उस दिन करना चाहिए। पुराणों में वर्णन है, विशेष करके मत्स्य पुराण में ये वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये क्रियाएं करने के लिए कहा गया है पुराणों में, सोना खरीदने के लिए नहीं कहा गया। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगते हैं अक्षय तृतीया, बैंक एडवर्टाइजमेंट देता है कि खरीदिए सोना खरीदिए। उसमें कहा गया जप कीजिए, दान कीजिए, दान की महत्ता को दिया गया है। तो दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये अक्षय तृतीया का लाभ है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन महाभारत भी लिखी व्यासदेव ने। आप सब जानते हैं जब व्यासदेव महाभारत लिखना चाहते थे, कोई लिखने वाले नहीं थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा मैं बोल तो सकता हूं लेकिन लिखने के लिए अभी समय नहीं है कि लिखूं भी बोलूं भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी को बुलाओ, बुद्धि बड़ी तेज है, वो लिखते भी अच्छा है, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आगे चलकर लोगों को समझ में आना चाहिए ना महाभारत लिखा क्या है। तो कोई अच्छी, अगर किसी डॉक्टर ने लिखी होती महाभारत तो आज तक समझ नहीं आती, केवल केमिस्ट को समझ में आती है उनकी भाषा, है ना, उनकी हैंडराइटिंग। आज हमने तो कई बार देखा पर्चा, हमें तो समझ नहीं आता, केमिस्ट को समझ में आ जाता। तो गणेश जी को बुलाओ। तो गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने कहा एक शर्त है, मैं लिखूंगा, क्योंकि देखिए कितने श्लोक हैं जानते हैं महाभारत में। व्यासदेव ने अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ किया, कितने श्लोक का है कोई जानते हैं महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 महाभारत में 60,00,000 श्लोक है, 60,00,000। केवल 1,00,000 हमें उपलब्ध है, जिन्होंने 1,00,000 कहा वो सही है, लेकिन 1,00,000 उपलब्ध है। लेकिन जब व्यासदेव ने कही तो 60,00,000 श्लोकों की महाभारत कही। ज्यादातर श्लोक ऊंचे लोकों में सुनाए गए हैं। इसको श्रील प्रभुपाद श्रीमद भागवत के पहले स्कंद में कहते हैं और उसमें बताते हैं कि कितने लाख श्लोक कौन से ऋषि ने कहां पर सुनाए, ये सब प्रभुपाद ने लिखा। तो 60,00,000 श्लोक बोलने हैं तो गणेश जी भी तो थक जाएंगे। लेकिन गणेश जी ने कहा कि एक शर्त पर लिखूंगा, रुकना नहीं। अगर आप रुक गए कहीं पर तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यासदेव के लिए तकलीफ है, 60,00,000 श्लोक बोलने, थोड़ा तो पानी वानी पीना, कुछ पानी नहीं कम से कम, थोड़ा तो सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं रुकूंगा नहीं, बोलता रहूंगा, लेकिन आपको समझकर लिखना है। मैं जो श्लोक बोलूंगा उसको आपको समझना है अपनी बुद्धि से, तब लिखना, नहीं समझो तो नहीं लिखना। गणेश जी ने कहा ठीक है, क्योंकि गणेश जी तो बुद्धि देने वाले हैं, ऐसे कहा जाता है ना, बुद्धि बड़ी थी और सब समझ में आ जाएगा। तो व्यासदेव बोलते रहते, जब उन्हें थोड़ा सा रुकना होता तो एक ऐसा श्लोक बोल देते कि गणेश जी को भी सर खुजाना पड़ता, इसका अर्थ क्या है। तब तक 10-12 श्लोक और बना देते थे व्यासदेव। तो ऐसे ये महाभारत लिखी गई। तो ये महाभारत भी अक्षय तृतीया के दिन लिखी गई। और अगर महाभारत की बात करते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र सूर्य देव ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। कई लोग कहते हैं द्रौपदी को दिया, लेकिन महाभारत में इसका वर्णन नहीं है। महाभारत में कहा गया कि जब ये लोग वन में जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज निकले तो सारे ऋषि मुनि उनके साथ निकले। तो युधिष्ठिर ने कहा, अरे आप लोग कहां मेरे साथ आ रहे हैं, आप सब यहीं रुकिए हस्तिनापुर में, मेरे साथ मत आइए, हम लोग वैसे ही जंगल में रहने वाले, हमारे खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अरे युधिष्ठिर महाराज, हम कहां आपसे कुछ मांग रहे खाने के लिए, हम तो आपके साथ रहेंगे, क्यों, आप भक्त हैं, आप जहां जाएंगे कृष्ण कथा होगी। देखिए युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कैसे कैसे कहां कहां किया गया। ऋषि मुनि कहते हैं हमें खाने को कुछ नहीं चाहिए, रहने को कुछ नहीं, हम तो ऋषि मुनि वैरागी लोग हैं, पेड़ के नीचे रह लेंगे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन आप जहां रहेंगे वहां पर कथा होगी कृष्ण की, इसलिए आपके साथ चलेंगे। तो जब नहीं माने, उन्होंने बहुत समझाया युधिष्ठिर ने कि मैं गृहस्थ हूं, आप लोग वैरागी हैं, मेरा कर्तव्य है आपका, आपकी सेवा करना, आपकी सुविधाओं को देखना, मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा गृहस्थ के कर्तव्य को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके साथ चलेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हो गए, अपने गुरु जो उनके साथ में थे धौम्य ऋषि उनके पास गए। धौम्य ऋषि को जाकर कहा कि अब बताइए, आप बताइए मैं क्या करूं, इतने सारे ऋषि मुनि साथ में जाएंगे, कहां से खिलाऊंगा इनको। तो धौम्य ऋषि ने कहा कि देखो, सूर्य सब कुछ प्रदान करता है, सूर्य ही जल को लेता है, फिर वर्षा करता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, तो सूर्य अन्न का स्रोत है, तुम सूर्य देव की प्रार्थना करो। तो फिर उन्होंने तपस्या की, सूर्य नमस्कार किए, सूर्य के स्तोत्रों को कहा, जल में खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की सूर्य की ओर देखते हुए, और फिर सूर्य देव प्रकट हुए और अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने ये पात्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, 14 वर्ष तक आप लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये पात्र आपको दे रहा हूं, जब तक द्रौपदी इसमें से खा नहीं लेगी, जब तक द्रौपदी का भोजन समाप्त नहीं होगा, तब तक जितना चाहिए इसमें से मिलेगा, लेकिन जब द्रौपदी खा चुकी होगी फिर इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ये युधिष्ठिर महाराज को देते हुए उन्होंने कहा। तो हमेशा नियम ये होता था कि युधिष्ठिर महाराज सभी ऋषि मुनियों को खिलाते थे, फिर अपने सारे भाइयों को खिलाते थे, अंत में युधिष्ठिर महाराज खाते थे और उनके बाद द्रौपदी खाती थी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलता था उसमें। लेकिन आप जानते हैं कि ये बात भी झूठी कर दी श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस समय दुर्वासा मुनि आए, द्रौपदी खा चुकी थी, कुछ नहीं था, सब चिंता में थे कहां से खिलाएंगे, श्री कृष्ण ने एक दाना लिया और बता दिया कि सबके पेट भर गए। ये लीला भी बड़ी सुंदर है, आप सब जानते हैं कि कैसे दुर्योधन ने भेज दिया दुर्वासा मुनि को, और फिर दुर्वासा मुनि आए हजारों शिष्यों के साथ, भूख लगी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ हाँ, आप लोग स्नान करके आइए, सबको खिलाएंगे। युधिष्ठिर महाराज अंदर गए तो देखा तो द्रौपदी खा चुकी है, कुछ भी नहीं है। अरे अब क्या होगा, मैंने तो कह दिया, और वो भी दुर्वासा। दुर्वासा मुनि को क्रोध बहुत जल्दी आता है, श्राप जल्दी दे देते हैं। तो खैर, श्री कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा, श्री कृष्ण आए, उन्होंने एक दाना लिया, उसमें से सबका पेट भर गया, इतना भर गया कि अब जरा सा इतना खाने की जगह नहीं। और फिर भीम को भेजा गया, जाओ भीम बुला कर लो। भीम अपनी गदा लेकर गए सब हजारों ऋषियों के पास कि चलिए आपको खाना, और सब बोले अरे नहीं, पेट भरा, भागे वहां से भीम को देखकर कि तो भीम छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये अक्षय पात्र भी आज ही के दिन या अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर महाराज को दिया गया। अक्षय तृतीया के दिन एक और महत्वपूर्ण लीला हुई श्री कृष्ण की, और वो था अपने मित्र सुदामा से भेंट। आज ही के दिन सुदामा द्वारका में आए थे, श्री कृष्ण से उनकी भेंट हुई थी। तो अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा, आप सब जानते हैं, भगवान के बचपन के मित्र हैं, द्वारका के राजा बन गए। सुदामा के पास खाने के लिए कुछ नहीं, बड़े गरीब ब्राह्मण हैं। पत्नी ने एक दिन कह दिया, अरे तुम्हारे मित्र राजा हैं, जाओ उनसे कुछ मांग लो। सुदामा की इच्छा नहीं हुई कि कृष्ण से मैं अपने जीवन के लिए क्या मांगू। वैसे किसी भी भक्त को अपना जीवन चलाने के लिए श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण जानवरों का जीवन चला सकते हैं तो क्या हमारा जीवन नहीं चला सकते, ये विश्वास होना चाहिए। तो अपने खाने के लिए या अपने जीवन के लिए कुछ मांगना मतलब भगवान पर अविश्वास दिखलाना है, इसलिए उनसे नहीं मांगना चाहिए। तो सुदामा ने मना कर दिया। बहुत कहने के बाद पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कुछ लोग कहते कि पत्नी की इच्छा बच्चों के लिए नहीं, सुदामा ने सोचा कि शायद ये श्री कृष्ण की व्यवस्था है, मैं उनके दर्शन तो कर लूंगा। सुदामा उस समय ही जानते थे कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा उनसे, और ना ही उन्होंने मांगा। सुदामा तो केवल दर्शन करने गए थे कि ठीक है पत्नी इतना बोल रही है, चलो चले जाते हैं, दर्शन हो जाएंगे। सुदामा पहुंच गए, बहुत सुंदर वर्णन है श्री कृष्ण को, जैसे ही पता चला श्री कृष्ण स्वयं भाग कर बाहर आए, एक ऐसे गरीब ब्राह्मण का फटे हुए कपड़े उसका स्वागत करने के लिए। सारे लोग हैरान हो गए, और कहां लेकर गए, अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बिठाया सुदामा को, ये कभी नहीं हुआ था। अरे आपके भी घर में कभी कोई आता है तो आप सीधा बेडरूम में थोड़ी ले जाते हो, आप उसको बाहर मिलते हो, कहीं सोफे पर बिठाते हो, कहीं थोड़ा बातचीत करके पानी वानी पिला के भेज देते। सीधा अंदर लेकर गए, रुक्मिणी देख रही है, सत्यभामा देख रही है, क्या हो रहा है, ये है कौन व्यक्ति, और श्री कृष्ण के पांव धो रहे हैं। एक स्थान पर तो वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके पांव धोए, पांव धोए हैं, और फिर श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कुछ लाए मेरे लिए, भेजा होगा तुम्हारी पत्नी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रहे नहीं, क्योंकि लाए तो थे, थोड़े से पोहे लाए थे, ऐसे यहां दबा लिए थे, लेकिन शर्म आ रही थी, इतना ऐश्वर्य देखा, पता था राजा है लेकिन ऐश्वर्य देखा नहीं था। अब आप सोचो इस समय वो ऐश्वर्य को देख रहे हैं श्री कृष्ण के, इतना विशाल महल, हजारों सेवक, खाने पीने के लिए एक से एक व्यंजन, सोने के लिए बढ़िया स्थान। घबरा गए सुदामा, कैसे निकालू ये जरा से पोहे, वो भी पोहे मांग कर लाए थे पड़ोसी से, खुद के घर के नहीं थे, उनकी पत्नी चली गई थी और पड़ोसी से वो मांग कर ले आई थी, उसको लेकर आए, दूं कैसे। तो बड़ा उसको शर्म आ रही, छुपा कर रखो, श्री कृष्ण कह रहे नहीं कुछ तो भेजा होगा, दो दो। और फिर श्री कृष्ण ने उसको खींच लिया और खाने लगे, खा लिया एक बार, दूसरी बार खा रहे हैं, सत्यभामा रुक्मिणी ने रोक दिया, बस करो बस, एक बार आपने खा लिया हमको इतना देना पड़ेगा, अगर दो तीन बार खा लिया तो हम गरीब हो जाएंगे, रहने दीजिए, हम इतना नहीं दे सकते। और उस समय फिर उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन वहां जहां उनका घर था, ज्यादा दूर नहीं था, द्वारिका में श्री कृष्ण थे, पोरबंदर में उनका घर है, ज्यादा दूर भी नहीं, तो वहां पर उनके घर में उन्होंने अक्षय धन को प्रदान किया। हाँ जब वो वापस गए, उनको तो पता नहीं ना उन्होंने कुछ मांगा, श्री कृष्ण ने पूछा भाई तुम आए हो, कोई बात है बताओ, बोले कुछ नहीं बस ऐसे ही मिलने आ। कैसे मांगे अपने मित्र से, वो मित्रता ही कैसी जहां पर कुछ मांगना पड़े, और वो भी श्री कृष्ण से मित्रता हो और मांगना पड़े तो ऐसी मित्रता का लाभ क्या है। श्री कृष्ण परमात्मा है, उनको तो पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उसने कुछ नहीं मांगा क्योंकि वो मांगने आए ही नहीं थे, वो तो दर्शन के लिए आए थे। दर्शन हो गए, संतुष्ट हो गए, सुदामा चल दिए, वापस पहुंचे, रस्ते में सोच रहे हैं पत्नी को क्या कहूंगा, तो कुछ स्टोरियां बना रहे थे मन में, तो पत्नी पूछेगी ना लाए क्या, रोका किधर है, क्या बोलते पैसा दुट्टू क्या बड़े बड़े क्या बोलते कन्नड़ में, हाँ दुट्टू, वो किधर है पैसा किधर है। तब वो स्टोरी बना रहे थे कि जाकर कुछ कह दूंगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं गिर गया, दिया था श्री कृष्ण ने, ये क्या कहूं, ये सब अलग अलग विचार। और जैसे ही पहुंचे तो घर देख रहे हैं, अपना घर ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ कहां गया, इतना बड़ा महल, नौकर चाकर, धन ऐश्वर्य, वो सोचे कहीं गलत जगह पर आ गया, आया तो सही जगह था, कई बार आया हूं यहां पर, अब क्या हुआ। और इतने जा रहे थे वापस तो इतने में उनकी पत्नी आई सजी धजी गहने पहने हुए। सुदामा देखो कौन है ये, सुदामा ने प्रणाम किया, भाई कौन है, अरे कौन है कि तुम्हारी पत्नी हो। तो सुदामा ने कहा पत्नी ये क्या, ये सब क्या है क्या, बोले कृष्ण की कृपा। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ कि मुझे श्री कृष्ण से ये लेना पड़ा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा सुदामा की नहीं थी, सुदामा की पत्नी की थी, भगवान ने उसको भी पूरा किया क्योंकि वो पत्नी सुदामा से संबंधित, मेरे शुद्ध भक्त से संबंधित है, इसकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। ये श्री कृष्ण का भाव है। तो ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा से मिलने की बात हुई। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। जैसे आप देख रहे होंगे भगवान को चंदन लगा हुआ है। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ तो राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने आदेश दिए थे, कई सारी सेवाओं को उन्होंने बताया, उनमें से एक सेवा थी चंदन लागी। रोज चंदन लगाना मुझे, बड़ी गर्मी होती है उड़ीसा में, आप सब जानते हैं जो उड़ीसा में रहने वाले, तो जगन्नाथ जी ने चंदन रोज लगना चाहिए और विशेष करके 21 दिनों में। 21 दिन तो क्यों लगता है चंदन, क्यों 21 दिन तक चंदन यात्रा चलती है, क्योंकि ये जो 21 दिन होते हैं ये साल के सबसे गर्म दिन है। अब अक्षय तृतीया से लेकर आगे जो 21 दिन है इसमें सूर्य सीधा हमारे सिर के ऊपर होता है, अन्य समय में धीरे धीरे कहीं सूर्य इधर इत्यादि जाता है, एकदम पृथ्वी पर बीच में नहीं होता, लेकिन ये 21 दिन सारे वर्ष के सबसे गर्म दिन है, इसीलिए चंदन लगाया जाता है भगवान के शरीर पर ताकि भगवान को ठंडक मिले। तो जगन्नाथ जी को विशेष, जगन्नाथ जी का आदेश है कि उनको चंदन, वैसे हमने यहां जगन्नाथ जी को नहीं लगाया है चंदन, लेकिन जगन्नाथपुरी में उनके उत्सव विग्रह या विजय विग्रह कहलाते हैं मदन मोहन जी, तो उनको चंदन लगता है। और ये वहां पर बड़ा सुंदर उत्सव है, 21 दिन अंदर होता है 21 दिन बाहर होता है, ये दो उत्सव होते हैं वहां, तो 43 दिन हो जाते हैं। वैसे हर रोज लगता है भगवान को, कम से कम 5 बार चंदन लगता है जगन्नाथ जी को रोज वहां पर, लेकिन इस बार बड़े आराम से पूरे शरीर में लगाया जाता है। फिर उनको ले जाया जाता है एक शोभा यात्रा में, वहां पर एक सरोवर है जिसे नरेंद्र सरोवर कहते हैं, तो नरेंद्र सरोवर में जाते हैं शाम के समय, एक बहुत सुंदर नौका होती है, सजी हुई होती है, उसमें विराजमान होते हैं, फिर पूरा नौका विहार करते हैं। गर्मी का समय है तो फिर पानी में अच्छा लगता है। तो 21 दिन तक चलता है, तो 21 दिन बाहर होता है, 21 दिन अंदर होता है, 42 दिन की वहां चंदन यात्रा चलती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। आप देखते हैं इस्कॉन के भी सभी, इस्कॉन ही नहीं, आप जाइए वृंदावन में सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान को पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है, तो उनका चंदन का ही वेश होता है क्योंकि गर्मी है। और ये चंदन यात्रा हम लोग विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो माधवेंद्रपुरी का स्मरण करते हुए इसको करते हैं। ये भी लीला बड़े विस्तार से हम कह चुके हैं इसलिए उसको कह नहीं रहे कि माधवेंद्रपुरी में भगवान के लिए चंदन लाए थे गोपाल जी के लिए, फिर उन्होंने गोपीनाथ जी को चंदन लगाया था। तो ऐसे लीला है, चंदन पहले मलय पर्वत से आता था, आज जो मलेशिया है तो वहां मलय पर्वत था, वहां से चंदन आता था। ये अंग्रेजों ने जाकर सारे चंदन के पेड़ काट दिए वहां पर, अब केवल रबर मिलता है वहां पर, चंदन मिलता था जहां मलय पर्वत में, वहां केवल रबर मिलता है। तो चंदन वहां से आया करता था, जगन्नाथ जी के लिए लगता था, तो बहुत सुख चंदन आप जानते बहुत ठंडा करता है, तो इसीलिए चंदन यात्रा भी अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होती है। जगन्नाथ जी से संबंधित कई चीजें हैं, जैसे चंदन यात्रा तो प्रारंभ होती है, अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ जी का रथ बनना प्रारंभ होता है। आप जानते हैं हर वर्ष रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में, और हर वर्ष नया रथ बनाया जाता है, फिर जब रथ यात्रा हो जाती है तो उस रथ को तोड़कर उसकी लकड़ियां भगवान के किचन में इस्तेमाल हो जाती है रसोई के लिए, और हर वर्ष नया रथ बनता है। तो अक्षय तृतीया के दिन रथ बनना प्रारंभ होता है जगन्नाथ जी का, तो ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। साथ ही साथ जो चार धाम हैं लोग साधारणतः जिनको कहते बद्रीनाथ इत्यादि, तो बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री में अक्षय तृतीया के दिन दर्शन खुलते हैं, तो अब से अक्षय तृतीया के दिन से दर्शन खुल जाते हैं। और प्रायः जब तक अक्टूबर नवंबर जब तक वो बर्फ गिरनी शुरू नहीं हो जाती इतनी कि वहां कुछ नहीं, तब तक दर्शन खुले रहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ही वहां पर दर्शन खुलते हैं। और आज से कई वर्ष पहले सन 1953 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के दिन ही लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी झांसी में। तो ये पहली उनकी संस्था थी जो श्रील प्रभुपाद ने बनाई, लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में। तो ये भी अक्षय तृतीया के दिन ही 1953 16 मई का दिवस था, 16 मई 1953 श्रील प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन हुई हैं। ऐसे कहते हैं कि जो यज्ञ में बार्ली, इसको क्या कहते हैं, जौ या तिल जो कहा जाता है, यज्ञ में जो उपयोग होता है, वो भी आज ही के दिवस पर उसकी उसका रचना हुई थी, आज ही के दिवस पर हुआ था। तो ऐसे कई चीजें अक्षय तृतीया पर, सिंहाचलन में आप जाएंगे तो सिंहाचलन में साल भर नरसिंह देव का विग्रह ढका रहता है चंदन से, बहुत हैवी चंदन होता है, कई किलो का चंदन उनके ऊपर हो जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन उस सारे चंदन को निकाला जाता है। ऐसे कहते हैं कि करीब 48 किलो चंदन हो जाता है वो भगवान के शरीर पर पूरे साल में, फिर उसको हटाया जाता है। और आज अक्षय तृतीया के दिन बिना चंदन के उनके दर्शन होते हैं, बाकी पूरा वर्ष चंदन से वो ढके रहते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे चीजें आज के या अक्षय तृतीया के दिवस पर हैं, उनमें से थोड़ी बहुत हमने आज वर्णन किया। प्रमुखतः अक्षय तृतीया का महत्व ये है कि हम लोग ऐसे कार्यों को करें, भक्ति के कार्यों को करें जो अक्षय रहे, समाप्त ना हो, क्योंकि अन्य सभी कार्य शरीर के साथ समाप्त होने वाले हैं, लेकिन एक ही है भगवान की भक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम भगवान के नाम का जप ज्यादा करें, अध्ययन ज्यादा करें, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा को बढ़ाएं और अपना जीवन भगवान को समर्पण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? यस प्रभु जी, माइक दीजिए।